सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल उर्दू कॉर्नर को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, पेश खिदमत है हैरतनाक आसेब नगरी कहानी का दूसरा हिस्सा। रात को खाने के बाद उसी कमरे में तायाबू के साथ नशिस्त हुई। हिरा और सुल्ताना भी मौजूद थी। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। फिर ताया अबू ने बैठे बैठे जिक्र छेड़ा। ताया अबू ने कहा, हिरा और सुल्ताना बता रही थी कि तुम यहाँ से किसी होटल में मुंतकिल होने की बात कर रहे हो। जी ताया अबू, मैं ये सोच रहा था कि असल में मेरा आना तो पापा की तलाश में सिलसिले में है। मेरे जहन में ये बात थी कि पापा की तलाश के सिलसिले में मुझे यहाँ से कुछ मदद मिल सकेगी, लेकिन मैं देख चुका हूँ कि आपको कुछ मालूम नहीं। बाकी हिरा और सुल्ताना इस सिलसिले में कोई खास मदद कर नहीं सकती, मुझे तो कुछ करना है। तो होटल में जाकर तुम आसानी से इम्तियाज अहमद को तलाश कर सकोगे? ताया अबू ने सवाल किया। नहीं ताया अबू, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस। फिर वो मेरी बात काट कर कहने लगे, मैं जानता हूं बेटे, इससे आगे तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं। गलबन तुम यहाँ के संजीदा और खामोश माहौल से कुछ परेशान हो। बेटे कहीं भी जाओ जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। हमारे सारे रिश्ते यूं भी खत्म हो चुके हैं। अम्मा के हवाले से ही सही, कम अज कम इम्तियाज अहमद यहाँ आते जाते थे। अल्लाह उन्हें हर आफत से महफूज रखे, लंबी जिंदगी अता करे। बेटे पता तो चल ही जाएगा उनका किसी न किसी शक्ल में। तुम यहाँ से जाकर कम अज कम हमारा मान तो न तोड़ो, जो कुछ करना है यहीं बैठकर करो। हाँ, अगर ये सोचते हो कि इम्तियाज अहमद की मुझसे ज्यादा जायदाद वगैरह के सिलसिले में कोई रंजिश थी तो इंशाल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह बाप से मिलाए, मालूम कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो शुरू से ही इम्तियाज अहमद के घर छोड़कर चले जाने के खिलाफ था। उसका भी एक पसे मंजर है जो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन इम्तियाज अहमद के दिल में सबके लिए बुराई थी, जिसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँ आरा बेगम थी, जिन्हें इधर से उधर लगाने का बहुत शौक है। पता नहीं किस जज्बे के तहत वो आपस में सबको लड़वाने की ख्वाहिशमंद रहती थी। मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस तरह से बददिल होकर ना जाओ। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा सुल्ताना और हीरा मौजूद हैं, दोनों लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं। तुम जहां जाना चाहो इन दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ जा सकती है। ताया जी का लहजा ऐसा था कि मैं मौम की तरह पिघल गया। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मसला कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ के माहौल ने मुझे खौफजदा कर दिया। बहुत सी अनहोनी बातें हुई जो नाकाबले फहम है। इस घर का पुरिसरार माहौल मुझे मुतासिर कर रहा है। मुझे यूं लगा जैसे ताया साहब मेरी सोच पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकी रही इस घर की बात, तो यह बात तुम्हारे इल्म में आ चुकी है कि ताहिरा खानम ने इस घर की मलकियत के बारे में हम पर मुकदमा कर रखा है। ताहिरा खानम यानी तुम्हारी बड़ी ताई से भी जाहिर है तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, और जैसा कि मेरे इल्म में है कि इम्तियाज अहमद ने भी तुम लोगों को अपनी खानदानी शख्सियतों के बारे में कुछ नहीं बताया। ताहिरा खानम के बारे में तुम्हें बता दूं कि वह इंतहाई कीना परवर खातून है। एक ऐसे घराने से उनका ताल्लुक है जिसे तुम सियासी घराना कह सकते हो। उनके खानदान के बहुत से अफराद मुद्दतों से सरकारी ओहदों पर फाइज रहते चले आए और उनका अपना अलग मिजाज है। जायदाद की तकसीम के सिलसिले में भी खासी उल्टे सीधे मामले चलते आ रहे हैं, और ताहिरा खानम ने अपने इख्तियारात से काम लेकर जायदाद की तकसीम में अपनी पसंद की रद्दोबदल की। इसी तरह उन्होंने अपने अजीजों कारब की मदद से हम पर इजारादारी कायम रखी, तो दूसरी तरफ वो जादू टोने और चिल्ले वजीफों की कायल हैं। पता नहीं कहां कहां हाथ फैला रखे हैं, खुद भी चिल्ले करती हैं, दौलत की बेपनाह हवस है, हालांकि सिर्फ एक बेटी है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हमारे खानदान में बेटे सिर्फ इम्तियाज अहमद यानी तुम्हारे बाप के हैं। अल्लाह तुम लोगों को कायम दायम रखे। मैं तुमसे ये कह रहा था कि इम्तियाज अहमद की तलाश के सिलसिले में जो भी मंसूबा तुम्हारे जहन में हो, अगर मुनासिब समझो तो मुझसे मशवरा कर लेना। कोई बेहतर जरिया तलाश कर सकते हो तो मैं इस सिलसिले में अपनी मदद पेश करता हूँ। उनकी सारी बात सुनकर मैंने कहा, ताया जी आपका बहुत शुक्रिया। ये बात मेरे इल्म में है कि मेरे पापा यहीं आते थे और उसकी वजह दादी अम्मा है। सिर्फ सोच रहा हूँ कि आप खुद बेवसाइल हैं, मैं ही बाहर निकलकर ऐसा जरिया तलाश करूँ जिनकी मदद से पापा का कुछ पता चल सके। इस सिलसिले में एक बात आपसे जरूर मालूम करना चाहता हूँ। सुल्ताना और हीरा से मैंने जो गुफ्तगू की है इसमें इन्होंने मुझे इस मुकदमे के बारे में थोड़ी सी तफसील बताई है। मुझे ये पता चला कि आपका मुकदमा भी आपके वकील लड़ रहे हैं। जाहिर हुसैन का नाम भी आप ही के जरिए मेरे इल्म में आया। मैं जाहिर हुसैन को तलाश करना चाहता हूँ, हो सकता है उन्हें पापा के बारे में कुछ मालूमात हो। हाँ हो सकता है, जाहिर हुसैन के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन नियाज अली एडवोकेट को जरूर मालूम होगा। नियाज अली एडवोकेट ही मेरे केस की पैरवी कर रहे हैं। सुल्ताना तुम्हें कल नियाज अली के पास ले जाएगी। नियाज अली से तुम जाहिर हुसैन के बारे में पूछ लेना, जरूर कुछ मालूम होगा, क्योंकि वकील एक दूसरे को जानते हैं। और बेटे, जाने की बात मत करो जब तक तुम पाकिस्तान में हो। हमें इज्जत बख्शो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। अरे तायाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे अपने हैं और यकीन कीजिए, मैं बहरीन में रहकर हम पाकिस्तान की बातें जरूर सुनते रहे, लेकिन जब भी हमने यहाँ आकर अपने खानदान से मिलने की ख्वाहिश का जिक्र किया तो पापा ने यही कहा कि यहाँ उनकी कुछ दुश्मनियां हैं और वो यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, दुश्मनियां तो वाकई चल रही है। ये कमबख्त जर जन जमीन तीनों इस दुनिया में फसाद की जड़ है। बस ये हवस जर ही है जो रिश्तों को खा जाती है। बेटा, फिर कल ये करते हैं कि तुम हीरा या सुल्ताना के साथ निकल जाओ, जाहिर हुसैन का पूछ लेना। उम्मीद है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, गाड़ी पास है। जी ताया अबू। अबू, मैं चलूं दादी अम्मा को फीड करा दूं। सुल्ताना, तुम काफी वगैरह देख लेना, हीरा ने कहा और कमरे से निकल गई। मैं थोड़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर काफी पीने के बाद अपनी जगह से उठ गया। सुल्ताना ने कहा, अबू आप आराम करें, मैं शहाब भाई से बातें करूंगी। सुल्ताना मेरे साथ बाहर निकल आई तो मैंने कहा, दादी के पास चलें। सुल्ताना ने कहा, ठीक है, और हम दोनों दादी के कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ हीरा दादी अम्मा के सामने बैठी थी, खुराक की नलकियां वगैरह लगा दी गईं। मैं भी दादी के पास जा बैठा। मेरे दिल में एक अजीब सा प्यार उभर आया और मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, रूई के गालों जैसा नरम हाथ, बेजान लेकिन उसमें हरारत मौजूद थी जो जिंदगी का पता दे रही थी। सुल्ताना और हीरा खामोश थी, मैं पापा के ख्याल में डूबा था। दादी अम्मा का चेहरा देखता फिर अचानक दादी अम्मा के हाथ की उंगलियों में हरकत हुई और मुझे अपने हाथों पर उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। ये मेरा वहम नहीं था। मैंने दादी अम्मा की तरफ देखा, उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन अब उन्होंने मेरा हाथ बाकायदा पकड़ा हुआ था। हीरा और सुल्ताना उस वक्त तवज्जो नहीं दे रही थी, उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी जब मैंने दादी अम्मा के आंखें खोलने और मुस्कुराने की बात की थी। मैंने सोचा कि अब उन्हें हाथ पकड़ने का ये मंजर दिखाऊं। अभी मैंने ये सोचा ही था कि दादी अम्मा ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने चौंक कर उनका चेहरा देखा, उनकी पेशानी पर हल्की सी शिकने थी। मैं खामोश रह गया। अब कुछ सूरत हाल मेरी समझ में आ रही थी। दादी अम्मा किसी को मेरे साथ होने वाले इस अमल के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन और इस लेकिन से आगे एक पुरसरार खला था, एक समझ में न आने वाली बात। हीरा ने आगे बढ़कर खुराक की नलकियां लगाई, टिश्यू पेपर से उनका चेहरा साफ किया, बाल संवारे, फिर प्यार से उनकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर उन्हें खेस उड़ाकर बोली, चलें। जी चलें शाह भाई। मैं उनके साथ वापस चल पड़ा। मैंने एक निगाह दादी अम्मा के चेहरे पर डाली और दिल में कहा, ठीक है दादी अम्मा, कल किसी भी वक्त आपके पास अकेला आऊंगा और देखूंगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। हीरा और सुल्ताना के अंदाज से यूं लगा जैसे वो भी मेरे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन झिझक रही थी। मेरे दिल में एक बरादराना प्यार जाग उठा। वो मेरी कजन थी, मेरे बहन दानिया की तरह। मैंने मुस्कुराकर कहा, नींद आ रही है आप दोनों को? हीरा ने कहा, नहीं। तो फिर आइए मेरे कमरे में चलें, तायाबू नाराज तो नहीं होंगे? अरे बिल्कुल नहीं, हमें तो आपके आने की बहुत खुशी है। हमने यही सोचा था कि आप आएंगे तो आपसे खूब बातें करेंगे, आपके साथ खूब सैर तफरी करेंगे। अब्बू भी आप लोगों के बारे में खूब बातें करते हैं, सुल्ताना ने जल्दी से कहा। दोनों मेरे साथ कमरे में आ गईं। कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर फिर वही खफकान सा तारी होने लगा। वैसे दर हकीकत मैं रात की आमद से खौफजदा था। कमरे में क्याम करते ही मुझ पर अजीबो गरीब वाकयात रूनमा हुए थे जिन्होंने मुझे बौखला कर रख दिया। मैं सोच रहा था कि न जाने रात कैसी गुजरे। सुल्ताना और हीरा खुश खुश बैठ गईं। एक मुश्किल है हीरा और सुल्ताना, मैंने कहा। क्या? दोनों बयक बोली। मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, तुम पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और मैं परेशान हो जाता हूं, तो आप हमसे पूछने के बजाय अपने बारे में कुछ बताइए ना। हमें मालूम है वहां मनामा में हमारी चाची जान, हमारी कजन दानिया, बड़े भाई सरफराज क्या करते हैं, आप लोग वहां कैसा शहर है वो? अरे भाई वो अच्छा शहर है, इसके अलावा हम यूएई के दूसरे मुल्क भी देख चुके हैं, दुबई, शारजा, मस्कत वगैरह भी जा चुके हैं, इंग्लैंड और फ्रांस भी गए हैं।
अरे वाह भाई, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आया आप? अच्छा ये बताइए पाकिस्तान आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा हीरा, लेकिन आप लोग जानती हैं कि मैं एक परेशानी के आलम में आया हूँ। अल्लाह करे मेरे पापा जिंदा सलामत मिल जाएं, फिर यहाँ रहने का मजा है इंशाल्लाह। वो जरूर मिलेंगे, लेकिन आप एक वादा करें। वो क्या? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसके बाद आप काफी दिन तक हमारे पास रहेंगे, यही लाहौर समनाबाद में, सिर्फ हमारे पास। चले ठीक है, वादा है। एक बात बताए मुझे, दादी अम्मा 8 साल से कोमा में है, क्या वो कभी होश में नहीं आई? कभी नहीं, शुरू में वो कुछ ऐसा अस्पताल में रही, फिर डॉक्टर ने कहा कि इन्हें घर ले जाएं, अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं, अब वो उन्हें घर ले आए। हीरा ने बताया। उन्हें हुआ क्या था?
लाइट ब्रेन हेमरेज। खानदान में किसी और ने उन्हें अपने साथ रखने की पेशकश नहीं की। खानदान में था ही कौन शाहब भाई, बड़े ताया मर चुके थे, ताई सारे रिश्ते खत्म कर गईं, फूफी जहां आ रहा फूफा जान के जेरे असर हैं, और फूफा जान बस अल्लाह बचाए बेहद खुदगर्ज और तोता चिशम। अब्बू दादी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो खुद उन्हें कहीं और रखने के कायल नहीं। और आपको सच बताऊं, चाचा जान भी सिर्फ अब्बू पर एतमाद करते हैं, यानी आपके वालिद। उनके और अब्बू के दरमियान दादी अम्मा के बारे में होने वाली बातें हमने खुद सुनी। चाचा जान दादी अम्मा की इलाज से बिल्कुल मुतमइन थे। इन परेशान कुन हालात में सुल्ताना और हीरा पापा के बारे में जो बातें कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हीरा कहने लगी, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, शहाब भाई खुद ताई भी दादी अम्मा को सेहत याब देखना नहीं चाहती, क्योंकि इस तरह जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे से निकल जाने का खतरा है। अच्छा, उनकी तरफ से कोई खतरनाक कार्रवाई तो नहीं हुई, मैंने पूछा। ये तो पता नहीं, लेकिन काफी अरसा पहले एक रात हमारे घर में डाकू घुस आए थे, मगर उन डाकुओं ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की, उनमें से शायद एक दो हलाक भी हो गए। मोहल्ले वालों ने उनके साथियों को उनकी लाशें उठाकर ले जाते हुए देखा था। उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग क्यों की थी ये तो मालूम नहीं, बस ख्याल था कि वो डाकू नहीं बल्कि दादी अम्मा को नुकसान पहुंचाने आए थे। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा, दादी अम्मा का इलाज हो रहा है मुसलसल, डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा उनके मौलिज हैं, हफ्ते में एक बार वो आते हैं और मायना करके हदायत जारी करते हैं। हीरा और सुल्ताना कुछ देर के बाद चली गई और मेरे जहन में बहुत से ख्याल छोड़ गई। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और फिर मोबाइल फोन पर बहरेन से रब्ता कायम करने लगा। वो लोग बेचैनी से मेरे फोन के मुंतजर थे। हमारे दरमियान ये तय था कि मैं खुद उनसे फोन पर रब्ता करूंगा, जब तक मैं उन्हें फोन ना करूं वो खुद ये कोशिश ना करें। सरफराज मेरे बड़े भाई ने बेचैनी से पूछा, तुम खैरियत से हो शाहब? हाँ भाईजान, बिल्कुल सब ठीक है। पापा के बारे में कुछ पता चला? आज जरा सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ, कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ताया अब्बा का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा, वो मुझसे मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर मामा और दानिया से भी बातें हुई और फिर मैंने फोन बंद कर दिया और कपड़ों की अलमारी की तरफ मुतवज्जो हुआ ताकि लिबास तब्दील कर सकूं। पता नहीं हीरा या सुल्ताना ने मेरे कपड़े सूटकेस से निकालकर अलमारी में सजाए थे या हमीदा ने, या फिर उसने जिसने अपना नाम हमीदा बताया था वो कौन थी, वो इस आसानी से इस घर में कैसे आ गई और गायब भी हो गई। क्या पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात आम है? क्या लाहौर के घरों में ऐसी पुरिसरार मखलूक आम तौर पर रहती है? ताया अबू हीरा और सुल्ताना ने पूरे वसूख से कहा था कि घर के हालात कुछ भी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अलबत्त जब मैंने उनसे घर के बारे में पूछा था तो वो कुपकुपाने लगी थी। बहरहाल जो कुछ भी है, ये घर एक पुरिसरार है। बेशक मैं अपने पापा की तलाश में आया हूँ, लेकिन इस तरह के वाकयात का तजुर्बा भी मेरे लिए अनोखा है। कमरे में एक होलनाक खामोशी थी। मैं करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ भी है, जब तक पापा नहीं मिलते मैं ताया अबू के पास रहूंगा। इन तीनों ने ही मोहब्बत से मुझे रुकने के लिए कहा है। फिर दादी का अमल भी बेहद पुरिसरार लेकिन मोहब्बत आमेज है। पता नहीं दादी की क्या कहानी है, वो कोमा में है और सबकी तस्दीक करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरा वहम नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली और नींद आ गई। इब्तदाई चंद घंटे गहरी नींद सोया, लेकिन उस वक्त 4:30 बजे थे जब कमरे में अनोखा खेल शुरू हो गया। मैं रोशनी बंद करके सोया था क्योंकि मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। उस वक्त रोशनी से मेरी आंख खुल गई। ये रोशनी ड्रेसिंग टेबल के पास हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में मुझे एक चेहरा नजर आया, जो एक नौजवान लड़की थी। रोशन चांद जैसा चेहरा, लंबी लंबी पलकें, बेहद खूबसूरत आंखें। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी और उसकी पुश्त पर जैसे बालों का तूफान उमड़ पड़ा था। बड़े बालों का बेशक एक तस्वीर है, लेकिन इतने लंबे और गहरे स्याह बाल जो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ लम्हों के लिए मुझे एक ख्वाब सा लगा, लेकिन फिर मैं चौंक गया। ये ख्वाब नहीं, फिर ये लड़की कौन है और मेरे कमरे में कहां से आ गई? अभी मैं सोच ही रहा था कि लड़की ने रुख बदला और ड्रेसिंग टेबल की एक दराज खोलकर उससे परफ्यूम की एक बोतल निकाली और अपने लिबास पर स्प्रे करने लगी। एक आला दर्जे की खुशबू कमरे में फैल गई। लड़की ने बोतल वापस रखी और फिर अपनी जगह से उठ गई। वो खासी बुलंद कद थी। खड़े होकर उसने ड्रेसिंग के पास दीवार पर लगे एक इलेक्ट्रिक बटन को दबाया और कमरे में खूब अंधेरा हो गया, लेकिन उसका हेवला अब भी मेरी आंखों के सामने था। मैंने उसे एक दीवार की तरफ बढ़ते हुए देखा और फिर वो हेवला आसानी से दीवार में दाखिल होकर नजरों से गुम हो गया। मैं देर तक इसी तरह जमा रहा, फिर मेरी सारी हिस्सियात जाग गईं। मैं जल्दी से जगह से उठा। यहां सब कुछ अकल से बाहर हो रहा था, लेकिन इससे खौफजदा ना होना मेरी ना आगाही थी। दर हकीकत जिन भूत اور ایسے واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لہٰذا یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ لیکن خوف کی شدت ابھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ اسی تجسس کے تحت جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیوار پر اس بٹن کو تلاش کیا اور ڈریسنگ کا بلب روشن ہو گیا۔ پھر میں نے جو دراز کھولی جس سے اس لڑکی نے پرفیوم کی بوتل نکالی تھی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی شیشی بھی نہیں تھی۔ عجیب، سب کچھ عجیب۔ ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کر اس دیوار کے پاس پہنچا جس میں وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ دیوار بالکل ٹھوس اور سپاٹ تھی۔ دماغ خراب ہو کر رہ گیا، جھنجھلا گیا۔ دل چاہا کہ باہر نکلوں اور طاہر ابو سے کہوں کہ کیا یہاں میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کون کون رہتا ہے یہاں، اور اگر کوئی ہے بھی ہے یا نہ تو مجھ سے یہاں چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ غصے سے پاؤں پٹکتا میں واپس بستر پر آ گیا۔ بہت سی باتیں دماغ میں آ رہی تھی، پھر اسی عالم میں سو گیا۔ صبح سلطانہ اور ہیرا نے جگایا۔ وہ چائے کے برتن لینے آئی تھی، چہرے پر کل والی شوخی تھی۔ ویری بیڈ ٹی حاضر ہے سر؟ میں تو ابھی بیڈ ہی میں دفن ہوں، میں نے کہا۔ اٹھیے جلدی، صبح ہو گئی، غسل خانے جائیے، واپس آئیے، ہم آپ کے ساتھ چائے پئیں گے، اتنے عرصے بعد مراد پوری ہوئی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ چائے پینا اچھا لگا تھا۔ چائے کے دوران وہ شوخ گفتگو کرتی رہی، پھر میں نے کہا، وکیل صاحب کے پاس کون لے جائے گا مجھے اور کب؟ ابو سے بات ہوئی ہے، وکیل نیاز علی شام کو 4 بجے آفس آتے ہیں، دوپہر کورٹ میں رہتے ہیں، اس کے بعد آفس آتے ہیں، میں آپ کو ان کے آفس لے چلوں گی، سلطانہ نے کہا۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر حمیدہ آ گئی۔ اس نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی، تایا ابو سے بھی رسمی باتیں ہوئی، انہوں نے کہا دل چاہے تو بچیوں کے ساتھ گھومنے نکل جاؤ، شام کو نیاز احمد سے مل لینا۔ ابھی نہیں تایا ابو، پہلے پاپا کے بارے میں کوئی تسلی بخش خبر مل جائے، اس کے بعد سیر و تفریح اچھی لگے گی۔ ویسے ایک بات میرے لیے تعجب انگیز ہے۔ کیا؟ آپ کے اور تائی طاہرہ خانم کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے اور آپ کو ان کا پتہ تک نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، لیکن ایک دوسرے کے پتے سے بھی واقف نہیں۔ وہ اچھی طرح اس گھر کے بارے میں جانتی ہیں، میں نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ خود کہاں رہتی ہیں۔ مقدمے کے کاغذات وغیرہ نیاز علی کے پاس ہوتے ہیں، اگر تم چاہو تو نیاز علی سے ان کا پتہ لے لینا، تایا ابو نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ کوئی 11 بجے سلطانہ اور ہیرا کہیں چلی گئیں۔ تایا ابو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتے تھے، میں نے موقع غنیمت سمجھا اور دادی اماں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دوستو، یہ کہانی یوٹیوب چینل اردو کارنر پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی اماں اسی کیفیت میں تھی، ان کے پاس بیٹھ کر میں نے بڑے پیار سے انہیں آوازیں دی، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسئلہ، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ بہت دیر تک میں کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہوا، میں دکھی ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ تنہائی میں مجھ سے بات کریں گی۔ بہت دیر میں ان کے پاس رہا، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ وقت کافی تھا، میں نے اس گھر کو پوری طرح دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس اجاڑ حصے کی طرف چل پڑا۔ واقعی بڑی منوس جگہ تھی، عمارت کا سر پاؤں ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس حصے کی طرف چل پڑا جس کی وجہ تعمیر میری سمجھ میں سے باہر تھی۔ وہ 3 کمرے بنے ہوئے تھے جو بہت نیچے تھے، جن کے سامنے جھاڑ جھنکار امبار موجود تھے۔ میں نے ایک مضبوط سی لکڑی اٹھائی اور اسے اندر جانے کا راستہ بنایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سرد خانے میں آ گیا ہوں۔ سردی کی لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ باہر سے یہ جگہ جتنی چھوٹی لگتی تھی، اندر سے چھوٹی نہیں تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ اندر کافی صفائی تھی، زمین کچی تھی لیکن یوں لگتا جیسے کسی نے وہاں جھاڑو دی ہو۔ میں نے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر رک گیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے قریب سے کوئی گزرا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو دوسری طرف سے کھڑکھڑ کی آواز ابھری اور پھر کسی بلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد اچانک ہی کسی طرف سے 2 بلیاں لڑتی ہوئی آئی، ان دونوں کا رنگ کالا تھا۔ ان میں سے ایک بلی سیدھی نکل گئی، دوسری میرے پیر سے ٹکرائی اور میں نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی زور سے گھما دی۔ لکڑی خاصی طاقت سے گھومی تھی، حالانکہ میں نے جان بوجھ کر اتنی طاقت لگائی نہیں تھی، بس خوف کے عالم میں ضرب کی قوت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ بلی کافی زور سے اچھلی اور پھر زمین پر آ گری۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، زمین پر تڑپ رہی تھی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے اسے گھورنے لگا۔ بلی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور کلبازیاں کھا کھا کر گر رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بلی کا بدن بڑا سخت جان ہوتا ہے، بس اس کا سر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھرپور ضرب اس کے سر پر پڑ جائے تو اس سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی شاید ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی کلابازیاں کھاتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور اس کے بعد دروازے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے اب یہاں رکنا ممکن نہیں تھا، میں یہاں آ کر بہت دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے نیم تاریک ماحول کے باوجود خون پر بڑے بڑے دھبے نظر آئے اور دل میں شرمندہ ہو گیا۔ بلی کو اس طرح मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस हो गया। बाहर निकल कर मैंने लकड़ी फेंकी। अफसुर्दगी के आलम में कमरे की तरफ बढ़ा। सारे काम ही नहुसत भरे हो रहे थे। ये घर किस किस्म का है? अचानक कहीं से सरगोशी उभरी, घर को बुरा मत कहो, और मैं ठिठक कर रुक गया। इस वक्त मैं अपने कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। ये वही आवाज थी जो मैंने उस वक्त कमरे में सुनी थी जब मैं यहां से किसी होटल वगैरह में मुंतकिल होने के बारे में सोच रहा था और आवाज आई थी नहीं। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, घर को बुरा ना कहूं तो और क्या कहूं, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। बेसाख्ता अल्फाज मेरे मुंह से निकले, हालांकि मेरे सामने कोई नहीं था। एक नादीदा वजूद मुझे हिदायत दे रहा था, मगर वो कौन था और कहां था मैं नहीं जानता था। बहरहाल मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी क्या करता और क्या ना करता। अपने वालिद की तलाश में वतन आया था, वतन से मोहब्बत अपनी जगह थी, लेकिन मैं अपने शहर से वाकिफ नहीं था। अगर होटल में चला भी जाऊं तो क्या करूंगा। कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। बिल्ली के मेरे हाथ से जख्मी होने का मुझे बहुत दुख था, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दोपहर तक कोई मेरे पास नहीं आया और मैं परेशानी के आलम में मुख्तलिफ सोचों में घिरा रहा। आखिरी फैसला यही किया कि जो कुछ है उसे बर्दाश्त किया जाए और यहीं रुका जाए, अपने पापा की तलाश की जाए। फिर दोपहर के खाने का वक्त हो गया। माहौल पर एक सोगवार सी खामोशी तारी थी। खाने से फ्री होने के बाद, फरागत हासिल करने के बाद ताया अबू ने कहा, तो फिर तुम किस वक्त जा रहे हो? वैसे नियाज अली को मैंने टेलीफोन किया था, उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया था। उसने कहा कि नियाज अली साहब एक बार की मीटिंग में शरीक हैं, 3:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने उससे कहा कि मेरा पैगाम उन्हें पहुंचा दे कि कोई उनसे मुलाकात करने आ रहा है। जी ठीक है ताया अबू। सुल्ताना तुम 3 बजे घर से निकल जाना, आजकल सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होती है। 4 बजे नियाज अली के दफ्तर पहुंच जाना, कोई जरूरत पेश आए तो फोन कर देना। जी ठीक है अब्बा जान। मैं सुल्ताना के बराबर वाली सीट पर बैठ गया और सुल्ताना ने कार आगे बढ़ा दी। हीरा खामोशी से खड़ी हमें जाता देख रही थी। कार बाहर आई और मैं खामोशी से इतराफ का जायजा लेने लगा। सुल्ताना गुंजान रास्तों से कार भगा रही थी। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, रास्ते और फासले तय होते जा रहे थे और आखिरकार एक इमारत के सामने गाड़ी जा रुकी। अच्छी इमारत थी, खास तौर से लॉ चैम्बर बनाया गया था। हम 3री मंजिल पर पहुंच गए और फिर नियाज अली एडवोकेट के नाम की तख्ती वाले दरवाजे पर रुक कर सुल्ताना ने हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। बड़ा सा साफ कमरा था जिसमें स्टाफ के लिए मेजें पड़ी थी। इन मेजों पर 3 नौजवान वकील बैठे काम कर रहे थे। एक चपरासी भी मौजूद था जिसने सामने वाला दरवाजा खोला और हम दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। नियाज अली वक्त से पहले ऑफिस आ गए क्योंकि अभी 4 नहीं बजे थे। ये एक उधेड़ उम्र के आदमी थे, चेहरे से बहुत संजीदा मालूम होते थे। उन्होंने सर की हरकत से हमें इस्तकबाल किया, हमें आगे बढ़कर सलाम किया और बोले, हेलो बेबी। हेलो सर, सुल्ताना ने कहा, बैठ जाइए। कैसे हैं बेटा आप? आपके अब्बू ठीक है सर, आपको सलाम कह रहे थे, सुल्ताना ने कहा। वालेकुम सलाम, फोन पर बात हुई थी मेरी उनसे, ये शहाब है ना? जी सर ये शहाब ही है मैं। कैसे मिजाज हैं आपके शहाब साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, मुझे थोड़ी सी तफसील मुमताज अहमद खान साहब ने बताई थी, आप मुझसे जो भी चाहते हैं बिना धड़क बताइए। बातें तो बहुत सी हैं, मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन एक बुनियादी सवाल कि मिसला एडवोकेट जाहिर हुसैन की तलाश है। आप यकीनन जाहिर हुसैन एडवोकेट को जानते हैं। जाहिर हुसैन सोचने लगे, फिर कहने लगे, हाँ हमारे शनासाओं में से हैं। अगर आपको उनकी तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसी चैम्बर में हमारी मंजिल के पीछे हिस्से में जाहिर हुसैन का दफ्तर है। मेरा ख्याल है वो अभी नहीं आए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये काश ये वही जाहिर हुसैन हूँ। भाई मेरा ख्याल है वही होंगे। एक मिर्जा जाहिर बेग एडवोकेट हैं, एक जाहिर खान साहब नियाजी जो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस वक्त यही एक जाहिर है। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ जाती मामलात हैं? जी हाँ बस ऐसा ही समझ लीजिए, मुझे ताहिरा खानम का पता दरकार है। मिल जाएगा, मेरे पास फाइलों में मौजूद है, मैं अभी निकलवाई देता हूँ। आप ये बताएं आपको क्या पिलवाऊं? जी नहीं अंकल, बस शुक्रिया, हम चाय वगैरह पीकर आए हैं, सुल्ताना ने कहा। नियाज अली ने कहा और फोन उठाकर किसी से बात करने लगे। उन्होंने ताहिरा खानम के फाइल से उनके घर का पता लिखकर लाने के लिए कहा और फोन बंद कर दिया। कहने लगे, अगर मुनासिब समझें तो ये भी बताएं कि ताहिरा खानम के केस की क्या कैफियत है। मैंने पूछा, कैफियत ये है कि खुद उनके वकील इखलाक का कहना है कि वो केस हार चुकी हैं। अब मैं क्या कहूँ, खुद उनके वकील इस सिलसिले में मायूस हैं। انشاءاللہ تعالی عدالت سے جلد ہی ممتاز احمد صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں نے ممتاز صاحب سے بھی کہہ دیا ہے کہ طاہرہ خانم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ہار کر بیٹھ جائیں، وہ کیس ہار جائیں گی لیکن دوسرے ذریعے استعمال کریں گی، اس لیے ممتاز صاحب کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا، انہیں اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں خود بھی کسی وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ سلطانہ بیٹے آپ میرا یہ میسج انہیں دیں کہ میں ان سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، بہت ہی گوشہ نشین قسم کے انسان ہیں لیکن میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے اس کیس کے سلسلے میں دو تین پیشیاں پڑیں گی، اس کے بعد فیصلہ ممتاز صاحب کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ طاہرہ خانم کا دعویٰ غلط ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کروڑوں روپے کی ملکیت ہے، اس وقت جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تو اس زمین پہ اتنی قیمت نہیں تھی، موجودہ دور میں زمین کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے اس زمین کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، اور طاہرہ خانم یہ بات جانتی ہیں کہ اس زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو وہ اس سے کروڑوں کمائیں گی۔ خیر، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے، ظاہر حسین صاحب کو تلاش کر لیا جائے۔ ہاں، میں چپڑاسی بھیجتا ہوں۔ ایک بار پھر نیاز نے فون پر کسی کو ہدایات دی اور فون بند کر دیا۔ پھر چند منٹ کے بعد چپڑاسی نے اطلاع دی کہ ظاہر صاحب کورٹ سے واپس آ چکے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی تھی کہ میرے دونوں کام پہلے دن ہو گئے، یعنی طاہرہ خانم کا پتہ بھی مل گیا اور ظاہر یعنی وکیل سے ملاقات کے امکان بھی بڑھ گئے۔ میں ان سے پاپا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی میں نے نیاز علی ایڈوکیٹ سے اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے، اور بیٹے سلطانہ میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے، مجھے فون کر دینا، نیاز علی نے اخلاق سے کہا، اور ہم دونوں ان کے کمرے سے نکل آئے۔ باہر آئے تو کلرک نے ایک چٹ میرے ہاتھ میں تھما دی، یہ طاہرہ خانم کا پتا تھا۔ میں نے وہ چٹ احتیاط سے بیگ میں رکھ لی۔ چپڑاسی ہمیں ساتھ لے کر ظاہر حسین کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ظاہر صاحب کا آفس بھی سادہ سا تھا، ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے سامنے والے حصے میں کلرک بیٹھا تھا، دوسری میز پر ایک بارش آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ اگر کالا کوٹ نہ پہنے ہوتے تو کسی طور بھی وکیل نہ نظر آتے۔ ہم نے ظاہر حسین کے بارے میں پوچھا، کلرک نے اسی بارش آدمی کی جانب اشارہ کیا۔ میں اور سلطانہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ ظاہر حسین نے نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا اور بولا، تشریف رکھیے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میں نے پوچھا، آپ ظاہر حسین ہیں؟ کہنے لگے، الحمدللہ، فرمائیے۔ ظاہر صاحب، میں بحرین سے آیا ہوں، آپ امتیاز صاحب کو جانتے ہیں جن کا تعلق ماضی میں صفدر آباد سے رہ چکا ہے؟ وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، وہ میرے کلائنٹ ہے اور طویل عرصے سے میں ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ ظاہر صاحب، بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب بحرین کے دارالحکومت مناما میں رہتے ہیں اور یہاں ان کی جائیداد ہے۔ ہاں بیٹے، میرے ان سے بہت اچھے تعلق ہیں، وہ میرے صرف کلائنٹ نہیں دوست بھی ہیں۔ بات کیا ہے؟ تو کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ پچھلے پونے تین مہینے سے بحرین واپس نہیں پہنچے؟ ظاہر صاحب میری بات پر چونک بڑے اور حیرت سے بولے، کیا؟ جی ہاں، تقریباً پونے تین مہینے پہلے وہ معمول کے مطابق پاکستان آئے تھے۔ عام طور پر وہ 10-15 دن کے بعد واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب پونے تین مہینے ہو گئے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں اور وہ مناما واپس نہیں پہنچے۔ پونے تین مہینے ہے؟ ظاہر نے حیرانی سے کہا اور پھر ایک طرف رکھا ہوا رجسٹر اٹھا لیا اور اس کی ورک گردانی کرنے لگے۔ ایک صفحے پر رک کر انہوں نے کچھ دیکھا، پھر بولے، 27 تاریخ کو میرے پاس آئے تھے، اس دن میں نے 16 لاکھ روپے کی ایک رسید ان کے حوالے کی تھی، میرا مطلب ہے پاس بک جو ان کے بینک کی ہے۔ میں نے معمول کے مطابق وصول شدہ رقم ان کے بینک میں جمع کروائی اور پھر پاس بک ان کے حوالے کی۔ 27 تاریخ کا مطلب ہے آج سے 12 دن پہلے، اور 12 اور 3 15 دن پہلے کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میرا دل اچھل پڑا، کم از کم پاپا کی زندگی کی خبر تو ملی۔ آپ پورے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 دن پہلے ملے تھے؟ یہ دستخط موجود ہے میاں ان کے، میں اصول کا آدمی ہوں، ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے والد کے دستخط ہیں نا؟ ظاہر حسین نے رجسٹر میرے آگے کیا اور میں نے ایک لمحے میں پاپا کے دستخط کو پہچان لیا۔ میں بہت خوش ہو گیا، بہت شکریہ جناب، آپ نے میرا تردد دور کر دیا۔ مزید ان کے بارے میں کیا علم ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی مصروفیات کیا تھی؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی ان سے دوستی ہے۔ وہ کہنے لگے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں محتاط بھی ہوں اور مصروف بھی۔ بے شک میرے کسی سے کتنے اچھے تعلق نہ ہو، لیکن میں ذاتیات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ البتہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہاں ان کے کچھ عزیز و اقارب سے چپکلش رہی، بس اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ کوئی ایسی بات جو اتفاقی آپ کے علم میں ہو؟ ظاہر حسین سوچ میں ڈوب گئے، پھر انہوں نے کہا، 2 پتے دے سکتا ہوں میں آپ کو، یا پھر آپ کو اسی کا علم بھی ہو۔ यहाँ उनके बड़े भाई मुमताज साहब हैं, समनाबाद में उनका मकाम है। जी मैंने कहा मैं उनके पास ही ठहरा हुआ हूँ, मेरे ताया हैं और ये मेरी कजन है। अच्छा ठीक है, दूसरा पता उनके दोस्त का है, रमजी साहब, वो एक कारोबारी आदमी है, यहाँ उनका एक फ्लैट है अलामा इकबाल टाउन में। वो फ्लैट आम सा है, उसमें से इम्तियाज अहमद साहब इस्तेमाल करते रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझे उस फ्लैट पर बुलाया था, इसलिए मेरे इल्म में है। मैंने कहा आप मुझे उस फ्लैट का पता दे सकते हैं? जाहिर हुसैन ने डायरी से एक पता नोट करके मेरे हवाले कर दिया, फिर बोले कोई और खिदमत? मैंने अपना फोन नंबर आपको दे देता हूँ। उन्होंने अपना फोन नंबर मुझे दे दिया। मैं परेशान होकर पापा की तलाश में यहाँ आया हूँ, अगर उनके कोई बारे में इतला हो तो बराए करम इस नंबर पर जरूर इतला दे दीजिएगा। ठीक है, जाहिर हुसैन ने कहा और एक फाइल उठाकर अपने सामने रख ली। हम लोग वहां से उठे और बाहर निकल आए। सुल्ताना ने कहा इकबाल टाउन के इन फ्लैटों के बारे में मैं जानती हूँ, क्या ख्याल है वहाँ चलना है? हाँ सुल्ताना, बहुत जरूरी है। ठीक है फिर चलते हैं। जब निकले हैं तो चाचा जान के बारे में पूरी मालूमात ले लेनी चाहिए, सुल्ताना ने कहा। खुदा करे वो हमें मिल जाए, हो सकता है किसी उलझन की वजह से रुक गए हों, सुल्ताना ने खलूस से कहा। हम नीचे कार में आ बैठे और सुल्ताना ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एक जरा सा सुकून मिला, कम से कम 15 दिन बाद पापा की खैरियत पता चली थी। बहरहाल रास्ते तय होते जा रहे थे, इकबाल टाउन समनाबाद से ज्यादा दूर नहीं। हम लोग मतलूबा जगह पहुंचे और फिर उस फ्लैट पर जिसका पता हमें दिया गया था, लेकिन फ्लैट के दरवाजे पर ताला पड़ा था, जिसे हम देखकर मायूस हो गए। मैं सामने वाले फ्लैट से मालूमात हासिल करती हूँ, सुल्ताना ने कहा और फिर उसने दूसरे फ्लैट की कॉल बेल पर हाथ रख दिया। कुछ लम्हों बाद एक साहब आए और हम दोनों को सवालियां नजरों से देखने लगे। मैंने कहा माफ कीजिए, ये सामने वाले फ्लैट में रमजी साहब रहते हैं? उसने कहा हाँ। तो फिर रमजी साहब मिल सकते हैं? वो कहने लगे आप लोग कहीं बाहर से आए हैं, आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ? उन साहब ने कहा। तो मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे भाई यहाँ से लाश मिली है, रमजी साहब के एक दोस्त अमूमन यहाँ आकर रहा करते थे, पाकिस्तान से कहीं बाहर से आए थे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 7-8 दिन हो गए इस फ्लैट से बदबू के भभके उठने लगे, फ्लैट बंद था, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने दरवाजा खोल कर देखा तो अंदर एक लाश थी, ये उसी दोस्त की लाश थी जो यहाँ आया करते थे, हमने भी उन्हें अच्छी तरह देखा था। उस आदमी की बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा, सुल्ताना भी होनक सी हो गई। चंद लम्हे तक तो मैं बोल ही नहीं पाया, फिर मैंने रुंधी हुई आवाज में पूछा आप उन दोस्त का हुलिया बता सकते हैं जिनकी लाश यहाँ से मिली? कहने लगा हाँ बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। उन्होंने जो हुलिया बताया उसे सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, ये हुलिया 100% मेरे पापा का था। लेकिन उनका इंतकाल कैसे हुआ, सुल्ताना ने पूछा। पुलिस कहाँ किसी को कुछ बताती है साहब, हम तो वैसे ही मुसीबत में पड़ गए, 3-4 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और फजूल किस्म की बहस का शिकार होना पड़ा। वो तो यूं कहो कि मेरा बेटा अदालत में क्लर्क है, उसके ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से हम लोगों पर कोई अजाब नहीं आ सका, पुलिस आसानी से कहां छोड़ती है, वो आदमी कहने लगा। जनाब आप यहां का पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? वो कहने लगा आप लोग हैं कौन आखिर बताएं तो सही। मैंने कहा अगर आप हमें पुलिस स्टेशन का पता बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, हम रमजी साहब के रिश्तेदार हैं। उसने बताया कि पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, गाड़ी अगर है आपके पास तो आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर गाड़ी में जाना चाहें तो चले जाएं। उन साहब ने पुलिस स्टेशन का पता बताया और हम दोनों लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकल आए। सुल्ताना भी कुछ कहते हुए डर रही थी और मेरी भी हालत खराब थी। जो कुछ मालूमात हासिल हुई थी वो बड़ी भयानक थी। जाहिर हुसैन के कहने के मुताबिक पापा रमजी साहब के फ्लैट में ठहरा करते थे, रमजी साहब मुल्क से बाहर थे, फ्लैट से उनके दोस्त की लाश मिली थी और ये लाश का हुलिया जो बताया गया था वो मेरे पापा का था, क्या वो वही थे? डूबते दिल और लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं और सुल्ताना पुलिस स्टेशन पहुंचे। SHO खुश मिजाज इंसान था। मैंने अपना तारुफ करवाया और ये कि मैं बहरेन से आया हूं और असल मामला क्या है। SHO ने गर्दन हिलाई और कहने लगा बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो आपके वालिद साहब थे, लाश की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा जी दिखाइए और ये भी बताइए कि वो लाश कहाँ है। मेरा ख्याल है 4 दिन तक इस बात की तशहीर की गई, लाश को सर्द खाने में रखवा दिया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई इतला नहीं आई, चुनाचे उसे लावारिस लाश के तौर पर दफन कर दिया गया। ये तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस अफसर ने 3 तस्वीरें निकालकर हमारे सामने रख दी और मैं उन पर झुक गया। ओ मेरे खुदा, ये मेरे पापा की लाश थी। मेरे हलक से एक चीख निकली और उसके बाद मैं वहीं पुलिस स्टेशन में बेहोश हो गया। दोस्तों ये कहानी जारी है, नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।